Hi friends, welcome to another exciting episode of my podcast Machine Learning Interview Help Hindi. I'm your host Hulk and I hope you all are doing really good. Friends, एक request थी आपसे कि प्लीज मेरा podcast आप Spotify पर फॉलो कर लीजिए. लोग सुनते हैं, appreciate करते हैं, तो एक अच्छा content prepare करने के लिए motivation मिलता है. आप listeners ही मेरा motivation है. So I request you to kindly follow this podcast on Spotify. It will be really a great emotional help and support. तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, मैंने एक ML कोर्स के दौरान एक डेटा सेट के साथ काम किया था जिसमें कई अलग अलग फीचर्स विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट रेंज और यूनिट्स में थे. दिस इज अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल एज अ फ्यू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर हाईली सेंसिटिव टू दीज फीचर्स. जैसे कि मोस्ट एल्गोरिथम वर्क वेल ओनली ऑन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसलिए जब फीचर्स इतने अलग अलग हैं तो हम उनको कैसे यूज करें कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी हो. इसलिए मैंने अपने प्रोजेक्ट में फीचर स्केलिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया. ये डेटा प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बिगिनर्स इसे ध्यान नहीं देते और समटाइम्स इग्नोर भी करते हैं, जिसके कारण उनके मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है. और इम्पॉर्टेंट होने की वजह से ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है. और मोस्टली एवरीवन नो अबाउट इट, बट समटाइम्स कंफ्यूजन होने की वजह से आंसर नहीं दे पाते तो बैड इम्प्रेशन क्रिएट होता है. इस एपिसोड में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए डाटा नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में सीखेंगे. तो पहला सवाल है, व्हाई शुड वी परफॉर्म फीचर स्केलिंग. तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डिटेल में समझते हैं. लेट्स कंसीडर ग्रेडियंट डिसेंट बेस्ड एल्गोरिथम. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर न्यूरल नेटवर्क, दीज एल्गोरिथम यूज ग्रेडियंट डिसेंट एज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड इट रिक्वायर्स डेटा टू बी स्केल्ड. मैंने वेबसाइट पर ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला शो किया हुआ है. वेट को थीटा से रिप्रेजेंट किया है, तो जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली कह रहा है कि न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट. सो लॉस इज एक्चुअली मीन स्क्वायर एरर, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड स्क्वायर. तो यहाँ जो टर्म प्रिडिक्टेड यूज किया है वो है एक्चुअली वेट इनटू फीचर्स. हियर वेट इज रिप्रेजेंटेड विद थीटा एंड फीचर्स इज रिप्रेजेंटेड विद एक्स. तो फॉर्मूले में फीचर वैल्यू एक्स का होना ग्रेडियंट डिसेंट के स्टेप साइज पर असर डालेगा. यहाँ पर स्टेप साइज का मतलब है, जो भी अगर आप फॉर्मूला देख रहे हैं तो आप ओल्ड वेट में एक टर्म को घटा रहे हैं, तो ये टर्म किस पर डिपेंड करेगी, एक्स पे. एक्स की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हुई और माइनस में हुई तो नया वेट जो होगा उसमें ऐड हो जाएगा, यानी नया वेट और बड़ा हो जाएगा. और अगर वेट बहुत छोटा हुआ और माइनस का हुआ तो भी बहुत ज़्यादा माइनस हो जाएगा, तो वेट की वैल्यू बहुत कम भी हो जाएगी. तो इससे क्या होगा कि जो मान लो कोई फीचर है बहुत उसमें स्केल जो वैल्यूज है फीचर की वो बहुत ज़्यादा है और किसी में कम है. फॉर एग्जाम्पल हाउस प्राइस प्रेडिक्शन अगर हम कर रहे हैं तो एरिया पर स्क्वायर फीट और उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स तो कितने होंगे, 10 होंगे मैक्सिमम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत बड़ा घर होगा तो 10 कमरे होंगे. लेकिन वही एरिया पर स्क्वायर फीट तो थाउजेंड्स में होगा, एरिया स्क्वायर फीट, तो जैसे 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पर जो स्क्वायर फीट की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है और जो नंबर ऑफ रूम्स की वैल्यू है वो बहुत छोटी है. तो अगर फीचर के रेंजेस में अंतर होगा तो हर फीचर के लिए अलग अलग स्टेप साइज होगा. तो ग्रेडियंट डिसेंट को मिनिमा की तरफ आसानी से बढ़ने के लिए और ग्रेडियंट डिसेंट के स्टेप सभी फीचर्स के लिए एक समान रेट पर अपडेट होने के लिए हम डेटा को मॉडल में फीड करने से पहले स्केल कर देते हैं. एक और केस लेते हैं, डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स. डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम लाइक KNNs, के मीन्स क्लस्टरिंग, SVM, ये क्या है, रेंज ऑफ फीचर से सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है. दिस इज बिकॉज बिहाइंड द सीन ये एल्गोरिथम्स यूज करती हैं डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स, यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स, to find out the similarity. So there is a chance that higher weightage is given to the features with higher magnitudes. So it will impact eventually the performance of machine learning algorithm. And obviously, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा algorithm किसी एक feature की तरफ biased हो. So यहाँ पर एक important point note करने के लिए है कि we scale our data before employing a distance-based algorithm so that all features contribute equally to the result. So ये तो हो गया हमारी understanding develop करने के लिए कि why data scaling is important. Now what is normalization? Next question that can be asked. Normalization is a scaling technique in which values are shifted and rescaled so that they end up ranging between 0 and 1. It is also known as min-max scaling. I repeat, normalization is a scaling technique in which values are shifted and rescaled so that they end up ranging between 0 and 1. It is also known as min-max scaling. So formula normalization ka maine show kiya hua hai website pe. Here x max and x min are the maximum and minimum values of the feature respectively. Aur ab agar hum isme formula ko dhyan se dekhe to agar x ka column mein minimum value hai to numerator 0 ho jayega aur is tarah x norm ka value bhi 0 ho jayega. Dusri taraf agar x ka column mein maximum value hai to numerator denominator ke barabar ho jayega, जिससे x norm का वैल्यू 1 आ जाएगा. तो इससे हम ये समझ पाए कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कैसे रेंज करती है. और अगर x का वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में है तो x norm का वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगा. सो ये है नॉर्मलाइजेशन. नाउ व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन इज अनदर स्केलिंग मेथड वेयर द वैल्यूज आर सेंटर्ड अराउंड द मीन विद अ यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन. I repeat, standardization is another scaling method where the values are centered around the mean with a unit standard deviation. This means that the mean of the attribute becomes zero and the resultant distribution has a unit standard deviation. हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे डेटा को मीन से माइनस कर देते हैं. तो उससे क्या होता है, उसका मीन शिफ्ट होकर जीरो पे आ जाता है और फिर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है. यही आपका फॉर्मूला है. अगर आप फॉर्मूला देखें तो x अंडरस्कोर z इज इक्वल टू x माइनस x मीन डिवाइड बाय x स्टैंडर्ड डेविएशन. हियर x अंडरस्कोर z रिप्रेजेंट द स्टैंडर्डाइज वैल्यू, x std रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड x मीन रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ x. अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नॉर्मलाइज करें या स्टैंडर्डाइज करें. यह आपको कंफ्यूज करने के लिए जरूर पूछा जाएगा. सो नॉर्मलाइजेशन का उपयोग तब किया जा सकता है जब आपको पता है कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता. नॉर्मलाइजेशन मेथड उन एमएल एल्गोरिथम्स में काफी यूज किया जाता है जिसमें डेटा का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम नहीं किया जाता, जैसे कि के नियरेस्ट नेबर्स और न्यूरल नेटवर्क्स. दूसरी तरफ स्टैंडर्डाइजेशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने वाले डेटा के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो डेटा है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे. नॉर्मलाइजेशन के विपरीत स्टैंडर्डाइजेशन के पास कोई बाउंडिंग रेंज नहीं होता. इसलिए अगर आपके डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स हैं तो वो स्टैंडर्डाइजेशन से प्रभावित नहीं होंगे. तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स हैं देन यू कैन ऑप्ट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. बट एंड ऑफ द डे नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन किसी को भी यूज करें, ये चैलेंज हमेशा बना रहेगा और ये आपके यूज केस और आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पर डिपेंड करेगा. इस बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं. आपको कब डेटा नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज करना है ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा. आप हमेशा अपने मॉडल को रॉ डेटा प्लस नॉर्मलाइज डेटा प्लस स्टैंडर्डाइज डेटा में फिट करके परफॉर्मेंस कंपेयर करके बेहतर नतीजे के लिए एफर्ट कर सकते हैं. तो दोस्तों आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं. आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. एंड फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट कंसीडर करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माय पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग.